नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नार्ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एरिक डेविस की टेक्नोसिस, मिथ मैजिक एंड मिस्टिसिज्म इन द एज ऑफ इन्फॉर्मेशन। मीडिया अध्ययन, सांस्कृतिक आलोचना और धर्म के इतिहास को जोड़ने वाली एक प्रभावशाली गैर कथा पुस्तक है। इसका केंद्रीय प्रश्न सरल लेकिन गहरा है, क्या सूचना प्रौद्योगिकी केवल उपयोगी उपकरणों का क्षेत्र है या उसमें मनुष्य की पुरानी आध्यात्मिक आकांक्षाएं भी सक्रिय रहती है। डेविस का तर्क है कि आधुनिक संचार माध्यमों के साथ जुड़ी मुक्ति, सर्वज्ञान, अमृता, वैश्विक एकता और प्रलय की कल्पनाएं नई नहीं हैं। वे जादू, रहस्यवाद, ज्ञानवाद और सहस्राब्दीवादी आशाओं के पुराने रूपों से संवाद करती हैं। पुस्तक मुद्रण, टेलीग्राफ, रेडियो और इंटरनेट जैसी तकनीकों के आसपास बने विचारों को साथ रखती है। इसका उद्देश्य तकनीक को अंधविश्वास का परिणाम कहना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि तकनीकी तर्कशीलता के भीतर भी मिथकीय भाषा और पारलौकिक इच्छाएं काम करती हैं। इस तरह टेक्नोसिस डिजिटल संस्कृति की बौद्धिक और भावनात्मक पृष्ठभूमि को समझने का एक व्यापक ढांचा देती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, टेक्नोसिस, सूचना युग में ज्ञानवादी मुक्ति की कल्पना। डेविस ने टेक्नोसिस शब्द का उपयोग उस अनुभव और विचारधारा के लिए किया है जिसमें सूचना तकनीक को केवल संचार या गणना का साधन नहीं बल्कि विशेष ज्ञान और आत्मिक रूपांतरण का माध्यम माना जाता है। यह अवधारणा ज्ञानवाद के उस पुराने आग्रह से जुड़ती है जिसमें मुक्ति बाहरी नियमों से नहीं किसी प्रत्यक्ष और रूपांतरकारी ज्ञान से आती है। डिजिटल संसार में यह आग्रह अक्सर इस विश्वास के रूप में दिखाई देता है कि सूचना तक पहुंच व्यक्ति को सीमाओं से मुक्त कर देगी। शरीर, स्थान, मृत्यु और सामाजिक पदानुक्रम को पार करने की इच्छा इसमें शामिल हो सकती है। डेविस विशेष रूप से उस विचार की पड़ताल करते हैं कि मनुष्य को मुख्यतः सूचना के रूप में समझा जा सकता है। जब मन, स्मृति या पहचान को शरीर से अलग डेटा जैसा माना जाता है, तब चेतना को मशीन में स्थानांतरित करने जैसी कल्पनाएं संभव लगने लगती है। पुस्तक इस समानता को सरलीकृत धार्मिक आरोप के रूप में नहीं रखती। इसके बजाय वह बताती है कि तकनीकी भाषा किस तरह पुराने पारलौकिक प्रश्नों को नया रूप देती है। इससे पाठक यह पहचान सकता है कि डिजिटल अमरता या उत्तर मानवीय चेतना के दावे केवल वैज्ञानिक संभावनाओं के प्रश्न नहीं है। वे व्यक्ति, शरीर, आत्म और मुक्ति के बारे में गहरी दार्शनिक धारणाओं पर भी निर्भर है। दूसरा, संचार तकनीकों के साथ जादुई और धार्मिक रूपों का इतिहास। पुस्तक का एक प्रमुख योगदान यह है कि वह आधुनिक डिजिटल संस्कृति को अचानक उत्पन्न हुई घटना नहीं मानती। डेविस मुद्रण प्रेस से लेकर टेलीग्राफ, रेडियो और इंटरनेट तक संचार तकनीकों के इतिहास में उन रूपकों को खोजते हैं जिनमें अदृश्य संपर्क, दूरस्थ उपस्थिति और ज्ञान का प्रसार लगभग चमत्कारी अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। किसी नई तकनीक का वास्तविक उपयोग सीमित और भौतिक हो सकता है, लेकिन उसके आसपास की सार्वजनिक कल्पना अक्सर उससे कहीं बड़ी होती है। लोग उसमें मानव समुदाय को एक करने, अज्ञान मिटाने या भविष्य को निर्णायक रूप से बदल देने की क्षमता देखने लगते हैं। डेविस बिजली और कीमिया जैसे दूर दिखने वाले क्षेत्रों के बीच भी संबंधों की ओर ध्यान दिलाते हैं। यह तुलना वैज्ञानिक खोज को जादू कहने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य यह समझना है कि ऊर्जा, प्रकाश, संकेत और अदृश्य शक्ति जैसी भाषाएं पुराने प्रतीकों को नए तकनीकी संदर्भ देती है। इस ऐतिहासिक दृष्टि का व्यावहारिक लाभ यह है कि पाठक आज के डिजिटल दावों को उनके वंशक्रम में देख पाता है। इंटरनेट, आभासी वास्तविकता या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हर बड़ा दावा ना पूरी तरह नया है, ना केवल तकनीकी, उसमें पहले की संचार क्रांतियों से जुड़ी आशा और भय की संरचनाएं भी मौजूद है। तीसरा, आभासी संसार, भूमिका निभाना और पहचान की आध्यात्मिक खोज। डेविस के अनुसार आभासी संसारों का आकर्षण केवल मनोरंजन, सुविधा या पलायन से नहीं समझा जा सकता। ऑनलाइन भूमिका निभाने, डिजिटल अवतारों और आभासी वास्तविकता में व्यक्ति अपनी पहचान को बदलने, अनेक रूपों में बांटने और शरीर से आंशिक दूरी बनाने का अनुभव करता है। पुस्तक इन अनुभवों को धार्मिक और गूढ़ परंपराओं की उन प्रक्रियाओं के साथ रखती है जिनमें रूपांतरण, दीक्षा, प्रतीकात्मक यात्रा और वैकल्पिक जगत महत्वपूर्ण रहे हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर ऑनलाइन खेल धार्मिक अनुष्ठान है, तर्क अधिक सूक्ष्म है। डिजिटल माध्यम ऐसी मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक स्थितियां बना सकते हैं जिनमें पुराने आध्यात्मिक ढांचे फिर से अर्थपूर्ण लगने लगते हैं। आभासी अनुभव व्यक्ति को यह पूछने पर मजबूर करता है कि वास्तविक उपस्थिति क्या है, पहचान किसमें टिकती है और शरीर के बिना सामाजिक संबंध कितने वास्तविक है। डेविस की चर्चा यहां तकनीकी उत्साह और तकनीकी भय दोनों से दूरी बनाती है। वे न तो डिजिटल दुनिया को स्वतः मुक्ति का क्षेत्र मानते हैं, न उसे अनिवार्य रूप से भ्रम। बल्कि वे उसके भीतर काम कर रही इच्छा को पहचानते हैं, स्वयं को पुनर्निर्मित करने की इच्छा। यह दृष्टि आज की डिजिटल पहचान, अवतार संस्कृति और निमग्न माध्यमों पर विचार करते समय उपयोगी है, क्योंकि यह डिजाइन और बाजार से परे उनके सांस्कृतिक अर्थों को भी सामने लाती है। चौथा, प्रोग्रामिंग, कबाला और अदृश्य व्यवस्था की भाषा। टेक्नोसिस में डेविस प्रोग्रामिंग भाषाओं और कबाला जैसी गूढ़ व्याख्यात्मक परंपराओं के बीच समानताओं की संभावना पर विचार करते हैं। यहां मुख्य बिंदु प्रत्यक्ष समानता सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह देखना है कि दोनों में भाषा को केवल वर्णन का माध्यम नहीं माना जाता। भाषा संरचना बनाती है, नियम लागू करती है और एक अदृश्य व्यवस्था को कार्यशील रूप देती है। कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखे गए संकेत मशीन की क्रियाओं को निर्देशित करते हैं। गूढ़ परंपराओं में अक्षर, नाम और प्रतीक ब्रह्मांड, चेतना या सृजन की छिपी संरचना को समझने के उपकरण बन सकते हैं। यह तुलना बताती है कि कोड के प्रति आकर्षण में नियंत्रण और सृजन दोनों की इच्छा होती है। सही निर्देश देकर जटिल परिणाम उत्पन्न करना कुछ लोगों को ऐसी शक्ति का अनुभव दे सकता है जो साधारण भाषा से अधिक प्रभावी है। फिर भी पुस्तक की उपयोगिता इस आकर्षण को महिमामंडित करने में नहीं है। वह चेतावनी देती है कि सूचना और कोड को पूर्णतः निष्पक्ष, अमूर्त या शरीररहित मानना भ्रामक हो सकता है। कोड हमेशा संस्थाओं, मशीनों, ऊर्जा, श्रम और सामाजिक निर्णयों के माध्यम से काम करता है। इसलिए अदृश्य डिजिटल व्यवस्था को समझने के लिए उसके प्रतीकात्मक आकर्षण के साथ उसके भौतिक आधार को भी देखना आवश्यक है। अंत में प्रलय, विलक्षणता और नेटवर्क पथ की आलोचनात्मक संभावना। डेविस तकनीकी संस्कृति में बार बार लौटने वाले प्रलयकारी और उद्धारवादी स्वप्नों को गंभीरता से लेते हैं। नई सूचना तकनीकों के साथ अक्सर दो विपरीत कथाएं उभरती है। एक कथा कहती है कि तकनीक मानवता को अभूतपूर्व एकता, बुद्धि या अमरता तक ले जाएगी। दूसरी कथा नियंत्रण, विघटन और मानवीय अर्थ के अंत की आशंका व्यक्त करती है। पुस्तक दिखाती है कि ये केवल भविष्यवाणियां नहीं, बल्कि धार्मिक इतिहास में परिचित अंतकालीन संरचनाएं हैं। उत्तर मानवीय चेतना और विलक्षणता के विचारों में भी इस प्रकार की मुक्ति और निर्णायक परिवर्तन की आकांक्षा देखी जा सकती है। डेविस इन्हें केवल हास्यास्पद अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविक तकनीकी बदलावों से जुड़ी मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं। पर वे इनके भीतर छिपे सत्ता, बहिष्कार और भौतिक असमानता के प्रश्नों को अनदेखा करने से भी बचते हैं। पुस्तक के अंतिम क्षितिज में नेटवर्क पथ का विचार उभरता है, एक ऐसी भोलतावादी दृष्टि जो विज्ञान और आत्मा, आधुनिकता और शून्यवाद, तकनीक और मानव के बीच संघर्षों को एक ही कठोर सिद्धांत से हल करने का दावा नहीं करती। इसका मूल्य तैयार समाधान में नहीं, बल्कि जटिलता के प्रति सजगता में है। यह पाठक को भविष्य के तकनीकी वादों और डरावनी घोषणाओं के पीछे मौजूद सांस्कृतिक इच्छाओं को परखने का अभ्यास देता है। निष्कर्ष में, टेक्नोसिस उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो इंटरनेट संस्कृति, मीडिया सिद्धांत, डिजिटल धर्म, विज्ञान कथा, गूढ़ परंपराओं या तकनीक के दर्शन में रुचि रखते हैं। तकनीकी पेशेवरों और नीति पर विचार करने वालों के लिए भी यह एक उपयोगी प्रतिपक्ष दे सकती है, क्योंकि यह याद दिलाती है कि किसी तकनीक की सामाजिक शक्ति केवल उसकी कार्यक्षमता से तय नहीं होती। उसके बारे में बने रूपक, वादे, भय और मुक्ति की कल्पनाएं भी उसके उपयोग और स्वीकार्यता को आकार देती है। पुस्तक का व्यावहारिक बौद्धिक लाभ यह है कि पाठक डिजिटल अमरता, आभासी पहचान, वैश्विक नेटवर्क और उत्तर मानवीय भविष्य जैसी चर्चाओं में छिपी मान्यताओं को अधिक स्पष्टता से पहचान सकता है। यह पुस्तक आसान रैखिक परिचय नहीं है, इसका दायरा व्यापक है और यह इतिहास, दर्शन, धर्म, लोकप्रिय संस्कृति तथा तकनीकी विचारों के बीच तेजी से चलती है। इसलिए जो पाठक सीधे निष्कर्ष या सीमित विषय वस्तु चाहते हैं, उन्हें इसकी शैली चुनौतीपूर्ण लग सकती है, फिर भी इसी विस्तार में इसकी विशिष्टता है। समान विषय की अनेक पुस्तकें तकनीक को या तो आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति या वैज्ञानिक प्रगति के रूप में देखती है। डेविस इन आयामों को नकारे बिना धार्मिक कल्पना और रहस्यवादी इच्छा को केंद्र में लाते हैं। वे तकनीक का उत्सव मनाने या उसके विरुद्ध चेतावनी देने के बजाय उसके सांस्कृतिक अवचेतन की जांच करते हैं। यही संतुलित, ऐतिहासिक और कल्पनाशील दृष्टि टेक्नोसिस को तकनीक पर लिखी सामान्य आलोचनात्मक पुस्तकों से अलग बनाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एरिक डेविस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।